कौन थी ये समझ लो। जब भगवान का बांगला अवतार हुआ था और भगवान बांगर बनकर गए थे बलि के मखताला में, यज्ञशाला में जहां शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे, और यज्ञ ऐसा करा रहे थे कि विष्णु को भी जीत लिया जाए, तो भगवान ने कहा ये बड़ी मुसीबत है, अगर यज्ञ पूरा हो गया तो हमारी भी खबर ले ले गए बलि। तो भगवान बानर बनकर गए और तीन पग पुतली मांगा था। उस समय राजा बलि की लड़की थी, उसका नाम था रत्नमाला। तो रत्नमाला बानर को देखकर वात्सल्य भाव से मोहित हो गई, ये मेरा बालक होता और मैं इसको अक्सर पिलाती हूं। ऐसी पंडित व्याकुलता हमें लोग उत्पन्न हुई। बादल भगवान अंतर्ज्ञानी, उन्होंने ज्ञान लिया और अपने हाथ से उसकी तरफ देखकर ऐसे इशारा कर दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। वो रत्नमाला सूचना बनी थी कृष्णावतार। जब ठाकुर जी रत्नमाला को उसके अस्तन को मुंह में डाला तो रत्नमाला को परमानंद मिला। साधारण स्त्रियों को अपने बच्चों के अस्तन पान कराने में बड़ा आनंद मिलता है, फिर श्याम सुंदर जिसके अस्तन को मुख में डालकर और दूध को खींचने की एक्टिंग करें तो कितना सुख मिलेगा। लेकिन उसके बाद ही जब श्री कृष्ण ने अस्तन पर बोझ डाला, अपने शरीर को भारी कर लिया, इतना भारी कर लिया कि वो चिल्लाई मुंचा प्रभासी। भागवत में लिखा है उसने मारे छोटे छोटे भगवान ने अरे के बच्चे के हाथ में क्या धरा क्या दबाएगा। लेकिन ठाकुर जी ने शरीर को इतना भारी कर दिया कि नृत्य नेत्र चरण भुज तस्मिन् रात्राप्तिपदि रोदः। आंखें उसकी बाहर निकल आई, इतने जोर से दबाया और दोनों हाथ और पैर पटकने लगी, मैं मरी मैं मरी मैं मरी। तो ठाकुर जी ने उसके कान में कहा कि देखो तुमने बल मांगा था कि मैं अस्तन पिलाऊं और फिर मैंने तुम्हारा अस्तन पीने का प्रयत्न भी नहीं किया, तुमने जबरदस्ती अपना अस्तन मेरे मुंह में डाल दिया, तो मैं अपने स्वभाव के कारण जैसे बच्चे अस्तन पीते हैं वो क्या जाने कौन माँ है कौन गैर माँ है, छह दिन का बच्चा क्या जाने। तो मैं दूध पीने लगा, अब उसमें दूध है कि लहर है क्या है ये मैं क्या जानू भला, और मेरे दूध पीने में अगर तुमको हार्ट अटैक हो जाए तो मैं क्या करूं। मैं तो दूध पी रहा हूं, तुमको दरदान जो दिया था हमने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, अब तुमको दौरा पड़ गया हाथ पैर पटक रही हो हाथ निकाल रही हो तो मैं इसमें तो मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बैंक में मर जाऊंगी। अरे बैंक तो जिसको जो मरना है मरता है, उसको क्या करेगा बच्चा, किसी का अपने पेट पे पैदा हुआ बच्चा भी क्या कर सकता है। कितनी माताएं बच्चा पैदा करते ही मर भी जाती है। तो वो रत्नमाला पूतना बनकर के आई तो भगवान ने उसकी बरदान की पूर्ति भी कर दिया और चूंकि वो तमाम सखाओं को खा जाती, जो सखाओं में तो इतनी शक्ति थी नहीं योग माया की, इसलिए ठाकुर जी ने कहा इसको यही समाप्त करो, चुप्पि करो। अब जो जो आते जाए हमारे पास उसको एक एक करके समाप्त करते चलो। ऐसी श्री कृष्ण आज के दिन छठी के दिन ठाकुर जी ने इस प्रकार पहला प्रहार किया और बिना हथियार के, और किसी को नहीं मालूम कि कैसे मरी। सारे ब्रजवासियों ने ये समझा कोई नारायण की लीला है, कोई नारायण की कृपा है हमारे बच्चे पर जो बच गया, क्योंकि तो मैया नारायण की भक्त थी। इंद्रान दीप्य पुराण दुर्गम नारायण ध्यास्यति। ठाकुर जी को उपदेश देती थी मैया, लाला कोई हिंसक जंतु मिल जाए जंगल में गाय चराते हुए, कोई भेड़िया हो गया तो डरना नहीं, नारायण का ध्यान करना। चार भुजा वाले नारायण भगवान होते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराते थे, पत्नी जाते थे, अच्छा मैया ठीक है ध्यान करेंगे। छह दिन के ठाकुर जी ने सबसे पहला चमत्कार दिखाया, लेकिन तब भी उनके चमत्कार को भी नमस्कार नहीं किया संत ने। उसके बाद उसने तृणावत को भेजा, कटकापुर को भेजा, गर्भापुर हेरुदापुर जिसे कहते हैं उसको भेजा, गधा बना करके सारे अपने कुंडियों को भेजता गया कि पहले तुम लोग चलो दो लोग, उसके बाद सबके आश्रम में हम आएंगे, क्योंकि अगर हम पहले चले गए तो तुम लोगों का वध नहीं होगा। एक्टिंग है, लेकिन क्रिश्चियन में सब सारे पहले से बने रहते हैं, देखो भाई इसके बाद तुम्हारा कि तुम यो ऐसा करना और तुम ऐसा करना। ऐसे ही सब ये भगवान के पात्र जो है कृपा पात्र, ये पहले से सब अपना अपना पाठ तैयार रखते हैं, इसी को लीला कहते हैं, जिसको संसार में आप लोग क्रिश्चियन कहते हैं। तो ऐसी चेतना का संघात का बदनाम स्वयं संपूर्ण गति मां की गति आज की दिन मिली थी, और सबसे बड़ा काम ठाकुर जी ने आज ही किया था। तो बाकी राक्षस जो थे उनसे पूतना का विषय अलग है। पूतना ने जहर पिलाया और उसको भगवान ने अपना लोक दे दिया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए किसी श्लोक के सुनने से, किसी लीला के सुनने से सुदेव परमहंस ने समाधि छोड़ी और सीधे चले आए व्यास जी के पास और भागवत सुना, फिर सुखदेव को सुनाया कि आप लोगों को भी मिल रहा है भागवत का रस। तो अगर पूतना न करती, ये पूतना कांड न होता, तो पूतना के कांड के बिना सुखदेव परमहंस की समाधि न खुलती और किसी लीला देती, और न खुलती तो सुखदेव वेदन व्यास के पास न जाते, तो फिर भागवत आज आप लोगों के सामने न होती। तो भगवान के नाम को लीलाधाम का संघर्ष उतना न प्राप्त होता जितना आज प्राप्त हो रहा है। ये छठी के दिन का कृष्णा का प्रक्रम
Thank you.
तो भगवान के शरीर से निकली हुई लाइफ का नाम ब्रह्म है, यानी आनंद कंद से आनंद निकला। आनंद चीनी के समान है और आनंद कंद है, इसलिए श्री कृष्णानंद ब्रह्मानंद से अनंत कोट गुना है। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्थ गुणी कृता नैष भक्ति सुखाम बोधे परमान कुलामति। ब्रह्मानंद में गुणा करो, एक लिख के उसके आगे 17 बिंदी, एक फिर 17 बिंदी लगाओ, एक खरब अरब से बहुत आगे चला गया हो, यानी ब्रह्मानंद से इतना गुणा अधिक गुणा कर दो आनंद का, तो भी प्रेमानंद के एक परमाणु के बराबर भी नहीं होगा, ऐसा है आनंद कम। ये दोनों कार्य आनंद में होते हैं। जब आनंद अंतःकरण में नहीं समाता, लिमिट से बाहर हो जाता है, तब नाचना गाना होता है। नाचना गाना दो प्रकार का होता है, एक बंधन युक्त नाचना गाना जिसमें स्वर और ताल दोनों ठीक ठीक रहे, गड़बड़ ना हो। जैसे कीर्तन में अगर एक आदमी अलग बोले या गलत स्वर बोले, ताल में न बोले, तो उसको लोग घूर के देखते हैं क्या डिस्टर्ब करता है। बहुत से लोगों को बेचारों को आनंद की बात नहीं है, उनको आता ही नहीं है ताल
लिए क्या करें?
तो ऐसे नहीं, इतना अधिक आनंद हो कि पाप ज्ञान भूल जाए, स्वर ज्ञान भूल जाए और नाचे गावे, वो असली नाचना गाना। खुशी में नाचने लगा, जब खुशी में नाचने लगा तो उसमें स्वर ताल का होश नहीं रहना चाहिए। अगर स्वर ताल का होश है तो फिर वो आनंद लिमिट में है, अंतःकरण के ऊपर नहीं गया, अभी अंतःकरण उसको जज्ब कर रहा है। तो ठाकुर जी जो नाच गा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे नाचते गाते हैं तो उनके गाने में भी कोई शब्द नहीं होता, बोलते अवंड बंड पैर रखते हैं, यानी ताल नहीं स्वर नहीं, स्वच्छंद बिनु ही छंद माने बिना कविता के, और स्वच्छंद आदात हमें किसी की परवाह नहीं। कोई कहे बेताला नाच रहा है, कोई बेपुरा गा रहा है, अपने दो लोगों को अपन तो अपनी मस्ती में नाचो गाओ। तो एक तो अवस्था होती है कि स्वर ताल से नाचना गाना, जैसे हमारे देश में उदय शंकर वगैरह बड़े बड़े टॉप के नाचनिया हुए हैं, है अभी जिंदा, तो ये लोग स्वर ताल के साथ नाचते गाते, इससे ऊंची अवस्था किसी और विदेशी पंथ नहीं सूझा, ओ मैं चलूं कहां नहीं बूझा। ये नाचना जिसने अंतःकरण के ऊपर चला गया, इसलिए स्वर ताल पर 0/100। और सिद्ध महापुरुष और भगवान का डांस दो प्रकार का होता है, एक तो नेचुरलिटी में होता है, स्वर ताल नहीं रहता, और एक योग माया के द्वारा होता है, उसमें स्वर ताल होता है और अंतःकरण के ऊपर है आनंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस है वहां पर। लेकिन स्वर ताल ठीक ठीक है, देखो महाराज हुआ यज्ञ प्रबंधम स्वर ताल बंधम, कोई स्वर गड़बड़ नहीं हुआ गोपियों का या श्री कृष्ण का, न कोई ताल गड़बड़ हुई, और श्री कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, चुंबन मिल रहा है, इतना आनंद का मेटीरियल भी है, इतना बड़ा एटमॉस्फियर ब्रह्म का मिलने पर भी किसी का न पैर गड़बड़ हुआ और न स्वर गड़बड़ हुआ। क्यों? अरे जब सुदीक्षण महाराज का गड़बड़ हो गया, तमाम साधकों का गड़बड़ हो जाता है, सिद्धों को छोड़ दो कभी कभी, तो ये गोपियां तो महापुरुषों की मूर्धन्य है, ब्रह्मा शंकर इनकी चरण धूलि चाहते हैं, वो योग माया की शक्ति से वो दिव्य जगत में होश में रहता है, माइक जगत से बेहोश हो गया, लेकिन योग माया के द्वारा वो जो नृत्य करता है गान करता है तो स्वर ताल युक्त होता है, कभी भी कहीं भी मिस्टेक नहीं हो सकती। ये तीन तरह का होता है। तो यहां ठाकुर जी का जो है ये नंबर दो आला है, यानी अंतःकरण के ऊपर आनंद तो है लेकिन योग माया से युक्त डांस नहीं है, इसलिए ठाकुर जी स्वर ताल की परवाह बिना किए स्वच्छंद नाच रहे हैं गा रहे हैं। हे बाबा
Thank you. है।